आइए अब हम जरा इस आयतों के साथ साथ चलते हैं. आयत नंबर 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम. ए लोगो जो ईमान लाए हो, किसको पुकारा? मक्का और मदीना वालों को, हम सबको. कौन है आमनू, ईमान लाने वाला? जो ईमान ले आया, जो अमन में आ गया, जिसको अल्लाह ने ईमान दे दिया. आमिना, मोमिना, हम सब अपना नाम कुछ भी रखें, लेकिन ये हुक्म हम सबको है, औरतों को भी है, मर्दों को भी है. क्या कहा? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया. पीछे भी बात हुई थी कि कुतिबा का लफ्जी माना क्या होता है? लिखना. लेकिन जब इसके आगे अला आ जाता है, जैसे कि यहाँ आ रहा है, तो इसका मानी क्या है? फरीज़ा, फ़र्ज किया गया. ऐ ईमान वालो, हरफ निदा पुकारा गया कि तुम जो ईमान ले आए हो, जो ज़ुबान से अल्लाह की तौहीद का इकरार कर चुके हो, दिल से अल्लाह के हुक्मों को मानने के लिए अब तैयार हो. पहले अपने आप से पूछिए, तैयार हो? अल्लाह को मान चुकी हो, अब अल्लाह की सुनना चाहती हो? तो फिर सुनने को तैयार रहे. क्या कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए. कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कब्लिकुम, साथ ही तसल्ली दे दी, जैसे तुमसे पहलों पे फ़र्ज किए गए थे. क्योंकि बाज़ दफ़ा जब पाबंदियाँ लगती हैं तो लोग ये सोच लेते हैं कि शायद हमारे ऊपर ही ये मुश्किल आ गई, तो कहा तुम पे ही नहीं आई, तुमसे पहलों पे भी आई थी. बाज़ लोग क्या कहते हैं, हाय मुसलमान ना ही होते तो रोज़ा ना रखना पड़ता. तो अल्लाह कहते हैं, तुम किसी भी इल्हामी मजहब में हो, अगर वो अपनी असल शक्ल के साथ दुनिया में मौजूद होता तो तुम्हें उसमें रोज़े रखने पड़ते. ठीक है, तो क्या पता चला कि रोज़ा रखना पड़ेगा तुम्हें भी, तुमसे पहलों को भी. क्यों रखो? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम इख्तियार करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो. अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका दिया है उसको समझो. पहली बात नोट कीजिए इस आयत के नाते से, कि सन 2 हिजरी में बदर की जंग से पहले रोज़ा फ़र्ज हो गया था. ठीक है, 13 साल मक्का में रोज़ा असल शक्ल में नहीं रहा, बस एक हल्का पुल्का 3 रोज़े और नफली रोज़ों का तذکرہ था. लेकिन आज जो रोज़ा हमारे पास है, जिसकी शक्ल हम देखते हैं, ये बदर से पहले फ़र्ज हुआ था. दूसरी बात यह है कि रोज़ा कहते किसको है, ये भी तो एक सवाल आता है ना. तो लिख लीजिए, सुबह सादिक से लेकर, यानी बिल्कुल सूरज निकलने से पहले, जो फजर की नमाज का इब्तदाई वक्त है, तब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी सन राइज से कुछ वक्त पहले से लेकर सनसेट तक खाने पीने और शोहर बीवी के ताल्लुक से रुकने का नाम रोज़ा है. रोज़े में बहुत सारे जायज़ काम भी नाजायज हो जाते हैं. अरब लोग कहते हैं सामुल फरस, घोड़ा चारे से रुक गया. यानी रोज़ा रखना क्या है, इसके अंदर रुकने का मानी पाया जाता है, किसी चीज़ से रुकना या उसको छोड़ देना, किसी चीज़ से पीछे कर देना. ठीक है, यहाँ देखिए कुतिबा अलैकुमुस्सियाम में ये नहीं बताया गया कि रमज़ान में फ़र्ज किया गया. पूरे कुरान में एक जगह भी आपको ये नहीं मिलेगा कि रोज़े रमज़ान में रखो. ये कहाँ पता चलता है? हदीस में. तो ये हुज्जियत हदीस है. जो लोग हदीस को नहीं मानते, उनको कहिए कि आप रोज़े मत रखिए, और वो नहीं रखते होंगे, मुश्किल इबादत है इसलिए. ठीक है, हदीस में ये हुक्म है, कुरान में ये नहीं है. आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक हर दौर में रोज़ा फ़र्ज रहा, और रोज़े के अंदर इंसान को अल्लाह ताला जो रूह देते हैं वो क्या है? लअल्लकुम तत्तकून. इस तकवा को समझ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर कभी आज के बाद रोज़ा आपको बुरा नहीं लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा, और मुश्किल भी लगी तो खैर लगेगी. आप देखिए कि हम साल में 11 महीने किसके तकाजे पूरे करते हैं? जिस्म के. ठीक है, खाना पीना, जागना, सेक्स, जिस्म के तकाजे हैं ना. नतीजा क्या होता है कि जब हम जिस्म के तकाजे पूरे करते हैं ना, तो हमारी रूह इग्नोर हो जाती है. बात वाज़ेह, जब जिस्म को बहुत पेम्पर करते हैं ना, तो नफ्स मोटा होता है. आप खुद देख लें, आप खाना छोड़ दें, थोड़ी दिन के बाद आपको भूख ही नहीं लगेगी. जो चीज़ आप खाते नहीं, लोग कहते हैं हाय कैसे सब्र करते हैं, आपको पता दिल ही नहीं करता. सेल्फ कंट्रोल आता है. खाना पीना और भूख नींद जितनी बढ़ाते जाएंगे बढ़ती जाएगी। मुझे ऐसे लगता है जैसे एक गुब्बारा है ना, आप उसमें जितनी पानी हवा भरते जाए ना, वो फूलता जाएगा। यही हाल हमारे जिस्म का है। हम जो काम जितना ज्यादा करते जाते हैं वो करना आसान है। इसी तरह आप देखिए, जो लोग काम नहीं करते उनको यहाँ से चीज उठा के वहां रखनी तकलीफ लगती है, हाय कितना मुश्किल है। और जो आदी है वो कहते हैं पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ, कट 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 कट, 5 मिनट में वो सब कुछ कर लेते हैं। तो इंसान के जिस्म की आदत क्या है कि उसको जितना नरम बना लो, सहल बना लो, हर वक्त अपना हाल ही पूछते रहो, तो जुबान पे उठते एक ही जुमला होगा, मेरी तबीयत खराब है, आज सर बहुत जल है, आज सर में दर्द है, आज नींद नहीं आई, आज दिमाग में दर्द है, कुछ है, ये सिर्फ नाजंदाज है और कुछ नहीं है। अगर वही छिपकली नजर आ जाए तो उसी बिस्तर से बंदा यूं उछल के निकलेगा कि याद भी नहीं रहेगा कि मेरे पाँव में दर्द था, कि सर में दर्द था, कि कमर में। सच्ची बात है, हम अपने नफ्स को 11 महीने पैम्पर करते हैं, नतीजा क्या होता है कि हमारी रूह भूखी रह जाती है। जिस्म और रूह का फर्क थोड़ा सा समझिए, रमजान के नाते से तो आप इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। आप देखिए कि आम दिनों में जबकि रमजान नहीं होता तो ज्यादा अहमियत दिन की होती है, रात इतनी अहम नहीं होती। काम भी दिन को होते हैं, खाते पीते भी दिन को है, घूमना फिरना भी दिन को है, जो भी करते हैं दिन को करते हैं, और अमूमन रात होती है तो फिर उसमें या फिर इंजॉयमेंट होती है या फिर सो जाते हैं, यही होता है ना, फन के नाम पे चीज़ें देख लेते हैं कुछ लोग, लिहाजा रात दबी रहती है। अब रमज़ान को देखिए, रमज़ान में दिन से ज़्यादा रात की अहमियत बन जाती है। पहली बात है कि रातों को उठ उठ के टाइम देखते हैं कि सहरी का टाइम ही ना चला जाए। आम दिनों में रात को खाना अच्छा ही नहीं लगता, दिल ही नहीं करता, और सहरियों में आधी आधी रात को बच्चों से उठ के छुप छुप के खा रहे होते हैं, वो बच्चे भी उठ के कहते हैं अच्छा अब हमसे छुप के खा रहे थे। याद है बचपन में हम सब भी यही कहते थे, अच्छा हमें सुला के आप खाना खाते हैं। है? फिर इबादत भी रात को होती है। फिर चूंकि गर्म मुल्कों में जैसे अरब मुल्कों में देखिए तो अमूमन फिर दुकानें भी रातों को ही खुलती हैं कि दिन में गर्मी बहुत है, शिद्दत बहुत है। अब समझिए रात क्या है, अंधेरी, जुल्मानी, जुल्म के अंधेरे को कहते हैं अरबी में, ब्लैक डार्क। दिन क्या है, नौरानी। आप कुरान पाक में इसकी दलील पढ़ेंगे आगे जाके इंशाल्लाह 29वें चीज के बारे में, सूरत नूह में आता है कि वजअलनल कमर नूरन, कमर क्या है, नूर, और सूरज क्या है, नार। अब आपको बात थोड़ी मुश्किल है, समझ आएगी कि नहीं आएगी मुझे कोई यकीन नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इस लफ्ज़ के अंदर लेके जाना चाहती हूँ कि जिस तरह रमज़ान में हम दिन से ज़्यादा रात की फिक्र करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह रमज़ान में हम अपने जिस्म के दो हिस्सों में से अंदर के हिस्से की ज़्यादा फिक्र करते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको ही डिस्कवर कर दूं, हमारे वजूद के दो हिस्से हैं, एक जाहरी है जो इस वक्त मैं आपका और आप मेरा देख रहे हैं, इसको आप नूरानी वजूद कह लें, नजर आने वाला वजूद, आंखें, कान, हाथ, बाल। एक हमारे अंदर का वजूद है जिसको रूह कहते हैं, सोल कहते हैं। इन दोनों को खाने की जरूरत होती है। अल्लाह सुबहाना ताला ने जो फितरी बांट रखी है ना, वो क्या है कि हमारी रूह हाकिम हो और हमारा ये जिस्म, आंखें, कान, हाथ, ये स्लेव हो, ये गुलाम हो, नेचुरल बांट जाए। अंदर को हुक्मरान होना है, बाहर को महकूम होना है, ठीक है, इतनी बात वाजे है। रूह डोमिनेंट हो, उसके तकाजे पूरे किए जाएं और जिस्म को दबाया जाए। जिस्म बना है मट्टी से, आदम को मट्टी से बनाया, आज हम जो खाना खाते हैं मट्टी से निकलता है। इस जिस्म को मट्टी वाली चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है, इसको दुनिया की चीजें अच्छी लगती हैं, खाओ पियो, गाजर, मूली, प्याज, आलू, चिकन, हर वक्त इस जिस्म का दिल करता है कुछ खाएं, कुछ आराम करें। इसके बरक्स जो हमारे अंदर रूह है वो कहाँ से आई, फनफख्तु फीहि मिन रूही, सूरत अल अराफ में आप पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि आदम का पुतला जब मैंने बना दिया तो फिर उसमें मैंने अपनी रूह डाली, ठीक, हमारी रूह अल्लाह की तरफ से भेजी गई, ये आसमान से आई, समझ लें। अब इसको क्या चाहिए होता है, आसमान की खुराक, और वो क्या है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नल कुलूब, रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कलाम, अल्लाह की याद है। जिस्म को खाना खा के जो खुशी मिलती है ना, रूह को इबादत करके वो खुशी मिलती है। जब फितरी तौर पे एक इंसान सही सालम होता है ना, तो वो रूह के तकाजे ज्यादा पूरे करता है, जिस्म के तकाजों में मोमिन इतना नहीं उलझता। हर वक्त यही क्वेश्चन नहीं होता आज क्या खाएंगे, बल्कि आज नहीं इसके अगले वक्त में क्या खाएंगे, फिर चाय के साथ शाम को क्या पियेंगे, फिर शाम की चाय के बाद डिनर में क्या लेंगे, फिर रात 12 बजे के स्नैक्स क्या होंगे, फिर मिड नाइट डिनर क्या होगा। ये जो होता है ना, ये जिस्म को पेम्पर करने वाली बातें हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमारी रूह गालिब रहे और जिस्म दबा रहे। जब ये होगा ना, तो वो नफ्से मुतमईन है, या ये तो हन नफ्सुल मुतमईन इर्जीला रब्बी की राधियत मर्दिया। बात लंबी हो जाती है, लेकिन मफहूम एक दफ़ा समझ ले, कुरान में 20 बार ये बात आपके काम आएगी। जब हम आम दिनों में हर वक्त खाते पीते सेक्स और अपनी इंटीमेसीज और इन दुनिया की चीज़ों में रहते हैं ना, तो हमारी रूह अंदर मुर्दा होने लगती है। इसीलिए काफिर के अंदर बड़े अंधेरे होते हैं। बज़ाहर काफिर बड़ा खूबसूरत ग्लैमरस पम्प एंड श्योर डांसिंग फ्लोर दिस दैट दिस, लेकिन रात को बिस्तर पे आता है तो ट्रैंक्लाइजर खा के सोता है। मोमिन की जिंदगी से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। बाजार कोई ग्लैमर नहीं, कोई उसके इर्द गिर्द आपको कुछ अकाचौन हीरे मोती चांदी सोने नहीं दिखेंगे, लेकिन उसका अंदर चमक रहा होता है और असल चीज़ अल्लाह ने अंदर बनाया। बिल्कुल आप इसको यूँ समझें कि जैसे कोई आपको गिफ्ट मिलता है, बड़ी खूबसूरत सी डिबिया है, आप कहते हैं वो इतनी प्यारी डिबिया, दिखाएं जरा आप अपनी डिबिया, इरम छोटी वो सुरख डिबिया दे। अब आप देखिए कि आपको अगर एक छोटी सी डिबिया मिलती है बड़ी खूबसूरत, और अभी तो आपको जो दिखा देंगे वो ऐसी ही है ना, लेकिन सजी हुई संवरी हुई, उस पर कवर चढ़ा हुआ है, रैपिंग पेपर है, फूल लगा हुआ है, रिबन लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है। अब क्या होगा कि आप उस डिबिया को देख के बड़े खुश होते हैं, आप कहते हैं हाय मैं तो इसकी पैकिंग कभी नहीं ख़त्म करूंगी, बस ये देखे ये डिबिया, अब इस वक्त तो ये एक ओरिजिनल शक्ल की डिबिया है ना, अब आपको किसी ने गिफ्ट में दी, फिर भी आप कहते हैं वाह कितनी अच्छी है, रेड कलर है, इसमें शाइन है, वो है, हो सकता है इस पर रैपिंग पेपर है, आप इसमें उलझे हुए हैं। अब आप इसको कहते हैं नहीं मैंने नहीं खोलना, खोला तो खराब हो जाएगा, कई दफा होता है ना ऐसा, लेकिन सस्पेंस तो होता है कि अंदर क्या है। जब आप कुछ देर रखते हैं, फिर आप कहते हैं चलो खोलूं, फिर आप एक एक करके खोलते हैं, एक एक करते हैं, आप कहते हैं चलो इसका बॉक्स खोलूं, फिर एक डब्बा खोला, कवर खोला, तो करते कराते आखिर में जब अंदर से कोई चीज़ निकलती है, तो वो क्या है, खूबी चमकती हुई चीज़। मतलब जैसे ये देखिए, अब ये छोटी सी एक चीज़ है ना, अब ये जैसी भी है जो भी है, आपके लिए असल कीमत किस चीज़ की आ गई, इसकी। अब मैंने उसमें से इसको निकाल दिया, इस मिरर को निकाल के इसको मैंने रख लिया, अब इस डिबिया के साथ क्या होना है, एक दो चार दफा मेरे पास पड़ी रहेगी, अगर इसको मैं इसी में रखूंगी, जूं ही मैंने इसको यूज किया, ये डिबिया इधर उधर हो जाएगी। ठीक है, ये है इंसान की हकीकत। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अल्लाह ताला ने जब आदम को पैदा किया था ना, तो असल चीज रूह थी, ये मोती या अंगूठी कह लें या मिरर जो है ना, ये इंसान की रूह है, ये दुनिया में भेजी जाती है। ये जो कपड़े मैंने और आपने पहने हुए ना, किसी को मोटा, किसी को पतला, किसी को ब्राउन, किसी को वाइट, किसी को पिंपल्स वाला, किसी के चेहरे पे बाल है, किसी को अल्लाह ने बिल्कुल स्पॉट फ्री किया है, ये असल में ये बाहर का बॉक्स है, किसी को एक रंग में कवर में डाल दिया, ये हो गया। दुनिया में इंसान इस सूरत में आया हुआ है, जैसे ये डिबिया हम देख रहे हैं, बाहर बाहर डिबिया दिख रही है, लेकिन असल में अंदर मोती है। अल्लाह ताला ने मौत की सूरत में हमारा ये मोती उठाना है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्ना इरजी, चल मेरी तरफ आ, ये रूह अल्लाह के पास चली जाती, कल सुना था ना हमने, ठीक है। और ये जिस्म का जो बुत रह जाता है ना खाली, अब इसको क्या करें, इसको जाके हम मट्टी में डंप कर देते हैं। जब हम मरते हैं ना, तो हमारा ये जिस्म का बुत कब्र के अंदर जाता है, किसी का जल जाता है, कोई पानी में डूब गया, कीड़े खा गए, या मट्टी में दबा दिए, ये चला गया, असल कीमत इसकी है। हमारे जिस्म के अंदर जो स्पिरिट है ना, जिसको आप कहते हैं मैं खुश हूँ, आप कहते हैं मैं खुश हूँ, वो कौन खुश है, ये आपका जिस्म खुश है, नहीं आपकी रूह खुश है। तो इस रूह को गालिब रखने के लिए रमजान के रोजे रखवाए जाते हैं, कि तुम सारा साल खा पी के आप इसको मोटा कर रहे हो। कभी आपने ये देखा कि अंदर से चीज बड़ी छोटी निकलती है, पैकिंग इतनी बड़ी होती है, ऐसे ही होता है ना, कहीं आपने मूविंग करनी हो, दूसरे शहर के मुल्क में जाना, तो आप फिर पैकिंग्स निकाल के फेंकते हैं, क्यों, कहते हैं एक तो जगह बहुत ले रहा है, वजन बहुत है, और अंदर से निकालनी तो ये चीज़ है ना, इसको लेके मैं छोटी सी पाउच में डाल के रख लेती हूँ। मौत की सूरत में भी यही होगा, आज हमारे जिस्म खा खा के मोटे हुए हैं, सारा वक्त हमें इस जाहिर की फिक्र है, कैसी लग रही, पार्लर्स किसका नाम है, किसको एंटरटेन कर रहे हैं पार्लर्स, इस जिस्म को। रेस्टोरेंट्स किसको पेम्पर कर रहे हैं? हमारे बुटीक्स, बताइए, जिम्स, बाजार, ग्रोसरी स्टोर्स, पूरे शहर के स्टोर्स को जरा जहन में लाइए, और प्लेसेस, फन प्लेक्स, खाने पीने, जिधर आप एंजॉय, किसको एंटरटेन करते हैं? इसको करते हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम इसकी फिक्र करो, लिहाजा आदत डालने के लिए साल में एक दफा इंसान को रोजे की हालत में रखा कि जिसमें हलाल काम भी नहीं कर सकते, हराम नहीं करना, हलाल भी नहीं कर सकते, खाना पीना हलाल है जरूरत की हद तक, रमजान में का नहीं, फर्ज रुक जाओ, लाल तत्को बचना चाहते हो तो फिर तुम आज हलाल से रुको। शोहर बीवी का ताल्लुक जायज है, रोजे की हालत में उसको कहा कि नहीं करो, क्यों? ताकि तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल आए। जब हम अपनी रूह को गालिब करेंगे ना, तो जिस्म फिर दबेगा। रोजे की हालत में एक आजिज़ी आती है अंदर के, नहीं, खास तौर पे इफ्तारी से कुछ पहले, ना भूख ना प्यास, बस नकाहत, कमजोरी। अल्लाह क्या चाहता है कि जिस्म के ऊपर गलबा हमारी रूह का हो। आप इसको यूँ समझे कि घर में एक मेड होती है ना और एक मालकन है। नेचुरल चीज क्या है कि मालकन का अपर हैंड हो और मुलाजिमा जो है, मेड जो है, वो उसकी बात माने, ये कर दो ये कर दो, इस वक्त आना इस वक्त आना, बिल्कुल सारा निज़ाम सही, वो काम करेगी, आप उसको पैसे देंगे, वो चली गई, बात खत्म। अगर किसी घर में कहानी उलट हो जाए, मेड हुक्म चलाने लग जाए और बेगम साहिबा कोने में लग जाए, तो वो घर क्या है? डिस्ट्रक्शन। यही हाल हमारी जिस्म और रूह का है। अगर रूह हाकिम है, ये हमें कहे उठो नमाज पढ़ो, उठो रोजा रखो, अल्लाह को याद करो, ये करो, नेकी करो, वही पीछे एक्सामे बिर को सोच ले, तो वो जिस्म, वो घर एक खूबसूरत जिस्म होगा। लेकिन जब वो हर वक्त ये दिमाग ही सोचता रहता है ना, अब क्या खाएं, अब क्या पहने, अब किधर चले, अब क्या फान, इस छुट्टियों में किधर जाना है, तो आप समझे कि वो घर की उल्टी गंगा है, और इसके नतीजे में डिप्रेशन है। जो बंदा आपके खानदान, रिश्तेदार, दोस्तों में डिप्रेशन का मरीज है ना, उसको ले आए इधर किताब में, मत मुसलमान हो, सिर्फ आके यहाँ बैठ के ये सीख ले कि जब हम अल्लाह के दीन को मानते हैं, तो हम अल्लाह की बात मानने के लिए अपनी रूह के तकाजे पूरे करते हैं, तो खुशी है। मोमिन की जन्नत उसके अंदर होती है, काफिर की दुनिया में बाहर ग्लैमर है। तो लाअल्लकुम तत्तकून को समझें कि तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल आए, तुम अपने आप को रोक सको। आंख का, कान का, दिल का, दिमाग का रोजा है। बुखारी की रिवायत है, तिरमिजी और अबू दाऊद में और मुसनद अहमद में भी है कि मल्लम यदा कौल जूरी वल अमिल बिही, जिसने झूठ बात कहना और उस पे अमल करना नहीं छोड़ा, ठीक है, फलैस लिल्लाहि हाजतन, फिर अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं है, कई यदा शराबहू व तामहू, कि वो खाना छोड़े या पीना छोड़े। तो रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, गुनाहों से भी रुकना है। तकवा में ये बातें आती हैं। आपने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, कि तुम जब रोजे से हो, कोई तुमसे झगड़ना चाहे तो कह दो फल यकुल इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं झगड़ती। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि सौम जुन्नतुन, रोजा एक ढाल है। हकीकत है कि रोजा रख के बंदे का गुनाह करने को दिल भी नहीं करता, ठीक है। तो क्या पता चला कि रोजे की हालत में बहुत सारी चीजों से रुकना है। अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेती हूँ, जुबानी जुबानी, ये बताइए कि रोजों के अंदर, रोजे की हालत या रमजान के दिनों की जिंदगी और गैर रमजान की जिंदगी में फर्क होता है? बहुत ज्यादा होता है। कितने लोग कहते हैं, हाथ खड़ा करें, ऑलमोस्ट सब यही कहते हैं। जमीन आसमान का होता है कि उससे कम होता है? जमीन आसमान का होता है। तो दुख के साथ कहूंगी कि ये बात दुरुस्त नहीं है। अब समझ लीजिए, तकवा जो है ना, दो तरह का होता है, एक है मोमिन का तकवा और एक है मुनाफिक का तकवा। एक बिलीवर का तकवा होता है और एक हिपोक्रेट का होता है। मोमिन का तकवा क्या है कि रमजान और गैर रमजान में सिर्फ 19-20 का फर्क होता है। खाना पहले भी दो ही वक्त खाता था, सिर्फ वक्त चेंज हो गया। सुबह 7 बजे नाश्ता करता था तो अब 5 बजे कर लेगा, दैट्स इट, सारा दिन उसका चूल्हा नहीं खुलता। डिनर रात को असर से मगरब में करता था तो अब मगरब से इशा के बीच में करता है। पहली बात, खाने पीने में तब भी पेट में थोड़ी जगह रख के छोड़ देता था, अब भी, तब भी नेचुरल पे रहता, तब भी नेचुरल पे, ना उसकी ईटिंग हैबिट में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ना उसकी बाकी चीजों में। आम हालात में भी मोमिन दिन में 5 दफा मस्जिद जाता है और घर में है तो वक्त पे नमाज पढ़ता है, तो रमजान में भी। आम दिनों में भी मोमिन की आंख का रोजा होता है गंदी चीजों से, फुखश से, ड्रामों से, फिल्मों से। आम दिनों में भी हु केयर्स, उसको क्या लगे रोजे हैं कि नहीं, उसने गंदी चीज नहीं देखनी, गंदी चीज नहीं सुननी। आम दिनों में भी मोमिन की जुबान गीबत से रोजा रखती है, वो नहीं गीबत करता, ताना नहीं देता, चुगली नहीं करता, ताक छान नहीं करता, बेकार बाजारों में नहीं फिरता, अपने दिमाग को खराब नहीं करता। मोमिन की फर्क नहीं, फर्क क्या पड़ा? वो जो रात के आखिर में जाके तहज्जुद पढ़ता था ना, 8 रकतों की सूरत में, फजर से पहले, वितर से पहले, वो रात को पढ़ लेता है, जिसको तरावी कह देते हैं, दैट्स इट। क्योंकि अल्लाह को पता है उस वक्त उसको खाना पीना है। आमतौर पे भी मोमिन का हर वक्त ध्यान सेक्स की तरफ नहीं होता, रोजे के दिनों में भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फितरत पे होता है, जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, रमजान में भी यही हाल है। आम दिनों में अगर उसको जिस्मानी तकाजों के लिए किसी चीज की जरूरत है तो रमजान में कोई फर्क ही नहीं। तो मोमिन के रमजान और गैर रमजान में बिल्कुल मामूली फर्क होता है। आ जाइए अब दूसरी तरफ, एक मुनाफिक नुमा जिंदगी भी होती है, निफाक से भरपूर। वो रमजान से पहले ही सोचना शुरू कर देता है, नहीं बस रमजान में मैंने नहीं ये करना, ये नहीं कहता कि अब इसके बाद नहीं करना, वो कहता सिर्फ रमजान के दौरान नहीं करना। टीवी को बंद कर दो, सारी वीडियोस छुपा दो, तस्वीरें बदल दो, खूब पढ़ना है, मस्जिद में भी जाना है। मुनाफिक का तकवर चांद के साथ बढ़ता और घटता है। पहले दिन मस्जिद खूब भरती है नमाजियों से, खूब आहिस्ता आहिस्ता मड़ान जा रहे, तरावियां भी पढ़े, बच्चे भी गए, 3-4 रोजों के बाद ठुस, फिर तरावियां भी कम, फिर आखिरी रातों में फिर जोश आता है कि नहीं अब तो जाने लगा। फिर वो झूठ नहीं बोलता, फिल्म में वो किस इंतजार में होता है, जरा ईद आले फिर देखना क्या करते हैं। उसको हर वक्त गम पड़ा होता है, अरे नहीं 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 चुप चुप रोजे हैं। ये जुमला जितनी दफा आप रमजान में बोले ना, अरे अरे ये नहीं करना रमजान है, तो समझ लें ये मुनाफिक कला लकुम तत्तकुन है। अब आप खुद देख लें, हम सब अपनी जिंदगियों पे गौर करें और सौ सौ आंसू बहा लें अगर हमारी हालत दूसरी है। हमारे यहाँ रोजे के हैं, और खाओ, वो नहीं जो कभी खाए आम दिनों में, वो अब और खाओ। पकौड़े तले तो रमजान की याद आती, समोसे देखे तो रमजान की याद आती, पराठे बनाए तो रमजान की याद आती है, दूध दही का इस्तेमाल करें तो रमजान की आती है। अल्लाह की बना हमारी रूह ने क्या खाना है, हम तो रमजान में भी इसी गम में मुबतला रहते हैं कि आज क्या खाना है। रस्म उसकी इफ्तारी, आज ससुराल की इफ्तारी, आज मैके की इफ्तारी, बच्चियों के ससुराल की इफ्तारी, कहते कह जी रोजा रख, खुलवाना सवाब है। खुलवाना है तो घर के गरीब मस्कीन गरीबों को खिला दे, जिनसे काम करवा करवा के आप उनके भी रोजे खराब करते हैं। तो लाल कुम तकून को जितना ज्यादा एलेबोरेट करके देख ले, आप अपने ऊपर इस चीज को महसूस कर सकते हैं। मोमिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छी तरह याद है कि अभी रमजान था जो पिछला, इस साल तो इधर था, इससे पीछे वाला रमजान नॉर्वे में थे। एक्स्ट्रॉर्डनरी लंबे दिन होते हैं, 11:30 तक भी मगरिब चली जाती है, जिसने सुबह खाना ही नहीं उसको क्या लगे फजर कब हुई, लेकिन 2-2:30 बजे फजर शुरू हो जाती है। 20 घंटे का भी रोजा होता है, 21-22। अक्सर लोगों की जुबान पे यही जुमले होते हैं, हाय क्या होगा। एक तो मुझे जुमला भूलता नहीं, एक बहन का, कहती ये रोजे हैं ये सजा है हमें, नऊज़ु बिल्लाह, इतनी उनकी जुबान में रौनत और कड़वाहट थी कि मैं को अल्लाह करे अल्लाह ने इसकी बात ना सुनी हो, पता नहीं इसके ऊपर क्या वबाल टूटेगा। इस मतलब बड़े गुस्से से कहा कि हाँ रोजे रखवा के बीमार करना है हमें। ये किसका तकवा है जिसने कभी चखा नहीं। जो बंदा पूरे साल में हर महीने में 3 रोजे रखता है, और अगर अल्लाह और तौफीक दे मंडे से थर्सडे भी रोजे रखता है, क्या फर्क पड़ता है। मैंने किसी से बात हुई तभी तो मैंने कहा मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता, हमारे घर में तो कोई फर्क ही नहीं होता, सारा साल ही अल्लाह के हुक्म से नफिल रोजों के इख्तमाम में वही हालात है, बल्कि मैं खुश होती हूँ रमजान है, सच बता रही हूँ, खुश होती हूँ रमजान है कि रमजान में एक तो माहौल बना होता है और मस्जिदों में कुछ ना कुछ वक्त बे वक्त पे, जैसे मर्द जाते हैं मेरे हस्बैंड है तो इनको कुछ कंपनी, कोई खजूर तो मिल जाएगी ना अगर मस्जिद में ये खुद नहीं भी लेके जाएंगे, और दूसरे भी हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं लगता, वो ये तमाम सारा साल खजूरें और पानी वैसे ही होता है जैसे होता है। तो बात का खुलासा क्या है कि रमजान एक ट्रेनिंग सेशन था ताकि बाकी 11 महीनों में दूसरी बातों को करो। इसलिए आप और मैं अब रोजे के असल पहलू को ना भूलें कि इस रोजे में हर चीज से अपने आप को पाक करना है। बाकी रह गई बात रोजे के फायदे, क्या है वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। आज तो नॉन मुस्लिम्स ने लिख दिए फायदे, मुस्लिम्स को तो छोड़ दें, किताबों की किताबें लिखी पड़ी हैं कि मैदे को खाली छोड़ो थोड़ी देर। हर वक्त जो एक चूल्हे पे बर्तन रहे तो काला ही होगा ना, कभी इसको धो के साफ करके रख दो। हर वक्त मैदे में हम थोड़ी देर पर चंक के सूरत में कुछ डाल देते हैं ना, अब मैदे की मशीन काम शुरू कर देती है। रोजे में क्या होता है कि चले कम अज कम शुरू आखिर में बहुत भी खा ले, लेकिन बीच में 10-12 घंटे कुछ नहीं खाते तो स्टमक को मौका मिल जाता है रेस्ट का भी, और जिस्म के अंदर जो जमी हुई चीजें होती है वो निकल जाती हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अपने अंदर इस तकवा को लेकर आना चाहते हो तो शऊर वाले रोजे रखो, तुम्हारे अंदर दर्द पैदा हो। ये जो हम कहते हैं ना रोजे इसलिए रखते हैं कि गरीबों का दर्द पैदा हो, भूख पता चले, गलत बात है। रोजे का मकसद एक ही है, लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह के सामने खड़े होने को देखो, जब्त करो, फिर देखो तुम्हें फायदा कितना होता है, और फिर आप देखो कि कुछ दूसरा भी तो काम करना है रमजान में। ये तो बात आप सब मानेंगे कि वक्त में बहुत बरकत होती है, और उसकी वजह एक ही है, चूल्हा बंद होता है। रमजान के दौरे कुरान में जिस तरह बहनें हूम हट के आती हैं और जोर से आती हैं, ये तो अब अल्लाह ने आपको जोड़ दिया, आपने कहाँ जुड़ना था अगर ये आपको कुरान ना ऑफर किया जाता, आप भी तो दौरे कुरान के लिए आए थे ना, अल्लाह ने मौका दिया आपने पकड़ लिया। क्या आज आपकी दोस्तों और रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे नहीं है जो आना चाहते थे रमजान में लेकिन अब नहीं आ पा रहे? आपका क्या ख्याल है, नौज बिलोन को शौक नहीं है? ऐसी बात नहीं है, चूल्हा खुल गया, बीच में लंच तैयार करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ खाने पीने की वजह से कुरान सीखने नहीं आ पाते, और सिखाने वाली बात तो फिर बहुत दूर होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सही मानों में हमें तौफीक दे।
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون